स्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से कुरंथियों के नाम संत पौलुस द्वारा लिखी गई दूसरी पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि हम आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
बदन का लहू दिया, मेरे गुनाहों को धो दिया, अपने बदन का लहू दिया। प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा, प्रभु यीशु मेरा सच्चा है खुदा।
प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रह करके कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों दूसरी कुरिन्थियों की पत्री, जो नए नियम की पत्री है, उससे अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने 11 अध्याय तक का अध्ययन किया था और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और 12 अध्याय के 13 पद से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सब अध्ययन में जाएं, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन फिर से एक बार दूर में बैठ करके एक साथ रेडियो के माध्यम से कर सकें। इस समय जब हम कुरिन्थियों की पत्री से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक की आत्मिक आंखों को, हमारे कानों को, हमारे हृदय और विचारों को खोल दें, ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं, निश्चित रूप से आपका वचन हमें से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, बीमार हैं। पिता परमेश्वर, उन पर भी अपनी अनुग्रह प्रदान करें, ताकि हर एक व्यक्ति आपके वचन के द्वारा चंगाई को प्राप्त करे, अपने आत्मिक जीवन में उन आशीषों को प्राप्त करे जिसे आप देना चाहते हैं। इस समय आप हम में से प्रत्येक के साथ हो और हर एक की सहायता करें। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज हम दूसरे कुरिन्थियों के पत्र से अध्ययन करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस अपनी प्रेरिताई की गवाही देने के बाद अब फिर कुरिन्थ आने की अपनी इच्छा को प्रकट करता है। पौलुस कुरिन्थ आने की योजना बनाता है। तो आइए हम देखें दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 13 और 14 पद में लिखा हुआ है, तुम कौन सी बात में दूसरी कलिसियाओं से कम थे, केवल इसमें कि मैंने तुम पर अपना भार ना डाला, मेरा यह अन्याय क्षमा करो। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ और मैं तुम पर कोई भार ना रखूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम ही को चाहता हूँ। क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए पर माता पिता को बच्चों के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस उनका आत्मिक पिता था, वही उन्हें मसीह में लाया था और कुरिन्थ में कलीसिया की स्थापना भी की थी। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 15 पद में आगे लिखा है, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। पौलुस कहता है क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम करोगे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शिकायत कर रहा है, ऐसा लगता है या नहीं? जी हाँ, परंतु परमेश्वर के आत्मा ने उस पर बल डाला कि वह स्वर्ग के दृश्य की चर्चा किसी से ना करे। वह केवल यहाँ पृथ्वी पर जो उसने दुख और कष्ट उठाए हैं उनकी ही चर्चा करे। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय के 16 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है कि मैंने तुम पर बोझ नहीं डाला परंतु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया है। ओह, सुनिए कि वह क्या कहता है, मैं आपकी धन संपत्ता के पीछे नहीं आपके पीछे था, मैं आपको मसीह में जीतना चाहता था। क्या यीशु ने अपने शिष्यों से भी यही नहीं कहा था? देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 19 पद में, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। उसने यह नहीं कहा था कि उनके द्वारा पकड़ी गई प्रत्येक मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा। मनुष्यों को पकड़ने वाला यही मुख्य बात थी। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, भला जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा क्या उनमें से किसी के द्वारा मैंने छल करके तुमसे कुछ ले लिया? मैंने तीतुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा तो क्या तीतुस ने छल करके तुमसे कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लीक पर न चले? ध्यान दीजिए, पौलुस ने चतुराई काम में नहीं ली थी, उसने परमेश्वर के वचन का सुबोध प्रचार किया था, उसने अपने पीछे अन्य सेवक नहीं भेजे कि उन्हें लूटे। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 12 अध्याय उसके 19 और 20 पद में हम आगे पढ़ते हैं, तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं, हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं और हे प्रियो सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर जैसा चाहता हूँ वैसा तुम्हें ना पाऊं और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ और तुम में झगड़ा डाह क्रोध विरोध ईर्ष्या चुगली अभिमान और बखेड़े हों। ये वे बातें हैं जो पौलुस कुरिन्थ पहुंचने पर उनमें देखना चाहता था। उन्हें पौलुस से बड़ी आशा थी और पौलुस को उनसे बड़ी आशा थी, परंतु वह वहां जाकर क्या देखेगा? यह वाद विवाद और कलह है। मैंने अनेक वर्ष सेवा की है और अब मैं ऐसे स्थान पर पहुंच गया हूं जहां मुझे विवाद करना अच्छा नहीं लगता है। यदा कदा मुझे पत्र प्राप्त होते हैं जिनमें मेरे रेडियो कार्यक्रम के श्रोता मुझसे मेरे द्वारा कही गई बातों पर विवाद करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, अपने विचार अपने पास रखें और मेरे लिए प्रार्थना करें कि यदि मैं गलत हूं तो परमेश्वर के आत्मा द्वारा सत्य का ज्ञान पाऊं। आप मुझे लंबा पत्र लिखकर समझा नहीं सकते, क्योंकि मैं स्पष्ट कहता हूं कि मुझ में ऐसे लंबे पत्र पढ़ने का अब धीरज भी नहीं है। आप संभवतः कहेंगे कि मेरी मानसिकता संकीर्ण और कट्टर है, अति संभव है, परंतु वाद विवाद से कुछ प्राप्त नहीं होता है। हमारा काम है परमेश्वर के वचन का प्रचार करना, अतः मैं वाद विवाद में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं प्रयास नहीं करूँगा कि वाद विवाद हो, मैं वचन की वही शिक्षा दूंगा जो समझता हूँ, बाइबल की ही शिक्षा दूंगा। जी हाँ, जब बाइबल सिखाता हूँ तो मुझे भी सीख मिलती है। आज की कलीसिया में वह सब कुछ है जिनका उल्लेख पौलुस यहाँ पर करता है, वाद विवाद ईर्ष्या क्रोध कलह पीठ पीछे बुराई करना। क्या आपने सुना है? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। मैं बताता हूँ और वे बुराई करना आरंभ कर देते हैं। इस प्रकार कानाफूसी की श्रृंखला चल पड़ती है। किसी ने कहा कि कानाफूसी की जाए तो बहुत लोग कर लेंगे। जी हाँ, अभिमान। मैंने प्रायः इसके अर्थ पर विचार किया है। मेरे विचार में डॉक्टर एच ए आयरन साइट की व्याख्या सर्वोत्तम है। उन्होंने कहा कि यह शब्द उन्हें पानी के किनारे बैठे मेंढक का स्मरण कराता है। वहां पर वह अपने आकार से दो गुना दिखाई देता है। अब यदि आप उसे पत्थर मारे तो वह फिर दुबला हो जाता है और पानी में कूद पड़ता है। अतः अभिमान को व्यक्त करने वाला अति उत्तम शब्द है दिखावा। कुछ विश्वासी बहुत कुछ दिखावा करते हैं। आगे है वखेड़ा, अर्थात कलीसिया में अव्यवस्था। गुटबंदी कलीसिया में अव्यवस्था फैलाती है। वे पत्र लिखकर उस पर हस्ताक्षर करवाते फिरते हैं, इससे अव्यवस्था होती है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 12 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परमेश्वर मेरे फिर से तुम्हारे यहाँ आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुतों के लिए फिर शोक करना पड़े जिन्होंने पहले पाप किया था और गंदे काम और व्यभिचार और लुचपन से जो उन्होंने किया मन नहीं फिराया। कुरिन्थ एक पतित नगर था, गिरा हुआ नगर था। संपूर्ण रोमी साम्राज्य में यह नगर पाप का केंद्र माना जाता था। वहां मनुष्य केवल पाप का भोग करने के लिए आते थे। यह सच है कि जहां पाप अधिक होता है वहां अनुग्रह भी अधिक होता है, परंतु कुरिन्थवासी पाप को गंभीरता से नहीं लेते थे। यह सब देखते हुए कलीसिया की छवि पर कुप्रभाव पड़ता है। इस पत्री को पढ़कर आपके मन में कुरिन्थ की कलीसिया के बारे में अच्छे विचार तो नहीं उत्पन्न होंगे। यह सच है वही एक कलीसिया नहीं है। आज अनेक कलीसियाएं ऐसी ही हैं जो पाई जाती हैं। एक क्षण इस पर विचार करके देखें। मान लीजिए कि प्रभु कलीसिया को लेने इसी पल आ जाता है। यदि वह इस संसार से सब सच्चे विश्वासियों को उठा ले तब क्या होगा? हमारा यह मानना है कि इसके बाद महाक्लेश आरंभ होगा। महाक्लेश में एक योगदान यह भी होगा कि कलीसिया यहाँ नहीं होगी। कलीसिया इस पृथ्वी का नमक है, जगत की ज्योति है। पवित्र आत्मा कलीसिया में वास करता है। आज का संसार अधिक अच्छा है या अधिक बुरा है? कुछ लोगों का कहना है कि कलीसिया ने संसार को सुधारा नहीं है, क्योंकि संसार 2000 वर्ष पूर्व की तुलना में अधिक बुरा हो गया है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि संसार अधिकाधिक बुरा होता जाएगा। बुरे मनुष्य अधिकाधिक बुरे होते जाएंगे और मेरे विचार में वे अपने जीवन काल में बुरे होते जाएंगे और उनके बाद दूसरी पीढ़ी आएगी। आज का संसार 2000 वर्ष पूर्व के संसार से अधिक अच्छा है, क्योंकि वे असभ्य पाप में लीन थे। ईश्वर ने परमेश्वर से याचना की, लुकार्ची सुसमाचार 23 अध्याय उसके 34 पद में, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। जी हाँ, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया था। मैं मानता हूं कि आज का संसार मसीह का इनकार करके उसे क्रूस पर चढ़ा रहा है। संसार का सबसे बड़ा पाप है मसीह का इनकार। प्रत्येक पीढ़ी इस पाप की दोषी है। प्रभु यीशु ने कहा था, जब पवित्र आत्मा आएगा तब वह संसार को पाप का बोध करवाएगा। योहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 9 पद में, पाप के विषय में, इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। पाप अनेक हैं, परंतु सबसे बड़ा पाप है प्रभु यीशु का इनकार करना। इस पृथ्वी पर यदि कोई घोर अपराध हुआ है तो वह 2000 वर्ष पूर्व परमेश्वर की हत्या का है। आज का संसार भी उतना ही पतित, घृष्ट और दुष्ट है जितना 2000 वर्ष पूर्व का संसार था। जी हाँ, मैं तो यही कहूंगा कि आज का संसार परिवार संभालने के लिए 2000 वर्ष पूर्व के संसार से अधिक अच्छा है। हमें अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं। आज अनेक साधन जीवन को अधिक सुलभ और आसान बनाते हैं जो 2000 वर्ष पूर्व नहीं थे। परंतु हमें यह समझना आवश्यक है कि कलीसिया के उद्देश्य संसार में फूल उगाने का नहीं था, जैसा कि इसराइल ने रेगिस्तान में किया है। वे तीर्थ यात्री थे जो वहां से गमन कर रहे थे, और उनके पास एक संदेश था, उनकी गवाही थी। कलिसिया का भी युगानुयुग का एक उद्देश्य है। जी हाँ, कलिसिया मनुष्यों का एक समूह है जिसे परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरना है, परमेश्वर के लिए जीना है। काश मैं कलिसिया को संबोधित करके कह पाता कि वह ऐसा ही कर रही है, और यह कैसा अद्भुत कार्य है। इस क्षेत्र में कलिसिया की चूक एक कारण है कि परमेश्वर के वचन की रुचि अधिकतर कलिसिया की गतिविधियों में अब नहीं है। कलिसिया अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझी हुई है, परंतु इससे प्रभु यीशु के प्रेम का निराकरण नहीं होता है जो वह कलिसिया से करता है। मेरे मित्रों, उसने कलिसिया के लिए स्वयं को बलि कर दिया कि उसको धोकर शोधन करे, शुद्ध करे। यद्यपि हम अपने निर्दिष्ट लक्ष्य से भटक चुके हैं, हमें उस दिशा में अग्रसर होना आवश्यक है। अतः हमने कुरिन्थ की कलिसिया को लिखे पत्र में देखा कि वह एक कलिसिया थी जो रोमी साम्राज्य के सबसे अधिक बुरे नगर में अवस्थित थी, और कैसी बुरी थी। मुझे यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि कलिसिया संसार को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं कर पाती है। ऐसा प्रतीत होगा कि कलिसिया का प्रभाव अधिक नहीं है, परंतु सच तो यह है कि यदि कलिसिया संसार से हटा ली जाए तो संसार की दशा बहुत ही बुरी हो जाएगी। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 12 समाप्त होता है, और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 13 से आरंभ करेंगे, जिसका विषय है पौलुस की प्रेरिताई का संपादन और उपसंहार। तो आइए देखें पौलुस की प्रेरिताई का संपादन। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 13 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। पौलुस अपनी बात दोहराता है, वह तीसरी बार कुरिन्थ जाएगा कि अपने प्रेरित होने का अधिकार को प्रकट करे। जब वह वहां पहुंचेगा तब सब कुछ सिद्ध होगा, सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। पौलुस प्रेरित होने का अधिकार प्रकट करेगा, वह अपनी दुर्बलता में मसीह के सामर्थ्य द्वारा अपनी प्रेरिताई का प्रमाण देगा। आइए पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है। जी हाँ, पौलुस उनके पास अपनी दुर्बलता में गया, परंतु परमेश्वर का वचन सामर्थी है, और उसने उस पापग्रस्त नगर में उनका जीवन बदल दिया था। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 13 अध्याय के 4 पद में लिखा है, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। यहाँ पर पौलुस कहता है, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। परमेश्वर की दुर्बलता की बात सुनना एक विचित्र बात है। यह दुर्बलता कैसी थी? क्रूस पर चढ़ाया जाना उसकी दुर्बलता ही थी। मेरे मित्रों, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र 13 अध्याय के 5 पद में लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो। क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। ध्यान दीजिए, इसका अभिप्राय स्वतंत्र इच्छा, पूर्व चयन या विश्वासी की सुरक्षा से नहीं है। पौलुस के कहने का अर्थ है कि हमें आत्मनिरीक्षण करके देखना है कि हम विश्वास में हैं या नहीं। हमें इसका सामना करके कामना करना है। जी हाँ, मेरे बारे में वर्ष में 2 या 3 बार हमें ऐसा करना चाहिए। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि उसकी एक छोटी सी बेटी है जो छोटे ही समय में उसने अपने विश्वास का अंगीकार किया था। उस समय वे अपनी नानी के घर में थी। एक दिन अकस्मात ही वह आकर अपनी माता से बोली कि वह यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहती है। तब उसकी माता उसे शयन कक्ष में ले गई और उसने घुटने टेक कर प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया। उसके बाद में उससे बार बार पूछता था कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके संबंध कैसे हैं। जब वह किशोर अवस्था में पहुंची तब उसने पूछा, पिताजी आप सदैव पूछते रहते हैं कि मैं विश्वास में हूँ या नहीं, मैं यीशु में विश्वास करती हूँ या नहीं। तब उसके पिता ने उससे कहा, मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मैं उसके साथ ही नहीं अपने स्वयं के साथ भी ऐसा ही करता हूँ। मेरे मित्रों, यह सुंदर उदाहरण है। मेरे विचार में प्रत्येक विश्वासी को ऐसा करना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय के 6 पद में आगे पढ़ते हैं, पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं। ध्यान दीजिए, पौलुस ने अपनी सूची बना ली थी और वह उन पर प्रकट करना चाहता था कि वह विश्वास में है। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय के 7 पद में आगे लिखा है, हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम खरे दीख पड़े, पर इसलिए कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरें। पौलुस के कहने का अर्थ है कि वह उसे चाहता है कि वे वैसे विश्वासी हों जैसे उन्हें होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय के 8 पद में लिखा है, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही कर सकते हैं। यह एक और ध्यान देने योग्य सत्य है। मित्रों, आप सत्य के विरोध कुछ भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि मैं वचन के विपक्षियों की चिंता नहीं करता। वे सत्य को कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकते। हमें वचन का प्रचार करना है। उसके प्रतिवाद में हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। समय न गवाएं। परमेश्वर ने हमें विवाद करने के लिए नहीं चुना है। हमें परमेश्वर के वचन को सत्य रूप में बताने के लिए कहा गया है। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं, जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो तो हम आनंदित होते हैं और यह प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। ध्यान दीजिए, तुम सिद्ध हो जाओ। यहाँ सिद्ध होने का अर्थ वह नहीं जो हम सोचते हैं, परंतु यह कि परिपक्व हो। पौलुस चाहता था कि वे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और ज्ञान में बढ़ते जाएं। हम आज भी यह उक्ति सुनते हैं कि तू बड़ा कब होगा। पौलुस यही कहता है कि मसीह में बढ़ते जाओ। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय के 10 पद में पढ़ते हैं, इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना ना पड़े। पौलुस प्रसन्न है कि वह उन्हें पत्र लिख रहा है। वह उनके विकास के उद्देश्य से लिख रहा है, उन्हें हताश करने के लिए नहीं। तब हम आगे देखते हैं पौलुस की प्रेरिताई का उपसंहार, दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसके 11 पद में, अतः हे भाइयों, आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, ढाढ़स रखो, एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। जी हाँ, वह फिर कहता है कि सिद्ध बनते जाओ, बढ़ते जाओ, शिशु विश्वासी मत बने रहो। कहने का मतलब कि बालक ही न रहो परंतु बढ़ते जाओ। आज भी अनेक विश्वासियों से यह कहा जा सकता है कि वे ढाढ़स रखें। उसने आरंभ में यही कहा था, परमेश्वर की शांति। जी हाँ, स्मरण रखें कि इसका अर्थ है सहायता। इसका अर्थ है परमेश्वर को हमें शांति देने, सहायता करने, शक्ति देने, प्रोत्साहित करने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर आपके लिए यह सब करना चाहता है। मेरे प्रियो, आप चाहे जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, परमेश्वर आपकी सहायता करना चाहता है। वह आपसे प्रेम करता है। वह पवित्र आत्मा की सेवा द्वारा अपने वचन के माध्यम से आपकी सहायता करना चाहता है। ये पद कैसे महान है। परमेश्वर शांति देने के लिए हमारे साथ है। हमें विकासमान होना है, परिपक्व होना है। हम सत्य के विरोध में कुछ भी नहीं कर सकते, केवल उसके पक्ष में ही कुछ कर सकते हैं। निश्चय ही हमें ऐसे प्रोत्साहन में परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। एक मन रखो, अर्थात मसीह का मन रखो, मेल से रहो। हम शांति तो ला नहीं सकते, परंतु मेल से अवश्य रह सकते हैं। प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। यह परमेश्वर की शांति है जो सारी समझ से परे या बाहर है। यह वह शांति मेल है जो परमेश्वर ने क्रूस पर बहाए गए लहू द्वारा स्थापित की है। हमें आज इस मेल से रहना है। हमें अपने उद्धार में आनंदित होना है। जी हाँ, प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। इससे न चुके। आप अकेले नहीं हैं, आज भी परमेश्वर आपके साथ है। यह कैसी ही अद्भुत और महान बात है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। मैं आपको स्वर्गीय डॉक्टर वाल्टर विल्सन की कहानी सुनाता हूँ। उनका एक मित्र उनसे भेंट करने आया और उन्हें चूमा। वह परमेश्वर के एक अद्भुत पवित्र जन थे। उसने उनकी पत्नी को भी चूमा। उसने डॉक्टर विल्सन से कहा, आपके अभिवादन में मेरा चुम्बन पवित्र था। मैं आपसे कहता हूँ मेरे मित्रों, यदि आप किसी को चूमते हैं तो वह निश्चय ही पवित्र चुम्बन हो। परंतु दुख की बात तो यह है कि आज लोग इस वचन का गलत अर्थ निकालते हैं। पौलुस कहता है कि हमारे चुम्बन पवित्र निष्कलंक हो, ताकि हम एक दूसरे को इसके द्वारा से संबोधन कर सकें, अपने पवित्रता को दर्शा सकें। आगे हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे। जब पौलुस कहता है तुम सब के साथ, तो वह हमें भी कुरिन्थ की कलीसिया में सहभागी बनाता है। हमें मसीह में जो कुछ प्राप्त है उसमें उल्लासित होना है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जी हाँ, हमें संसार ही नहीं अपनी कलीसियाओं में भी गवाह होना है, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर परमेश्वर के उस महान कार्य को कर सकें और उन आशीषों को प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं। प्रभु के वचन पर बने रहें, उससे प्रेम रखें, उसमें बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हे मेरे दाता, हे मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार। हे मेरे दाता, हे मेरे स्वामी, तेरी दया है अपार। कौन है ऐसा जिसने किया हो दुश्मनों से भी प्यार। तुझ पे सदा ही मान रखूं। मेरे गुनाहों